पृष्ठ संख्या 213, चार, महाकवि देव, सन 1673 से 1767 ईस्वी। रीतयुगीन रीतबद्ध कवियों में देव कवि का स्थान अन्यतम है। इनका पूरा नाम देवदत्त था, किंतु हिंदी साहित्य में ये देव के नाम से ही ख्यात हैं। देव के ग्रंथ उनके जीवन पर काफ़ी प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश के कुसमरा ग्राम में एक सनाढ़य ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहाँ आज भी इनके वंशज निवास करते हैं। रीतयुगीन साहित्य पर काम करने वाले तथा हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले सभी विद्वानों ने देवकवि की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नौन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। यद्यपि कि देव आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में हमारे सामने आते हैं, पर रीतिकाल के अन्य आचार्य कवियों की भांति शास्त्र विवेचन और सिद्धांत निरूपण में इनके यहाँ भी मौलिकता का अभाव है। फलतः देव का कवि रूप ही हिंदी जगत में सर्वाधिक लोकप्रिय है। देव कवि का जीवन गत्यात्मक रहा है। रीतिकालीन अन्य कवियों की भांति ये भी कई राजाओं के आश्रय में रहे, किंतु इन्हें कोई ऐसा आश्रयदाता नहीं मिला जहाँ निश्चिंतता से ये रह सके हों। देव साहित्य के विद्वान प्रोफेसर हरकृष्ण अवस्थी ने ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ उनके आश्रयदाताओं की सविस्तार जानकारी दी है। इससे पता चलता है कि देव औरंगजेब के तृतीय पुत्र आजम शाह, ददरी के राजा भवानी दत्त, सुल्तानपुर के दिल्लीवासी राजा भोगीलाल, सुजानमणि, डौंडिया खेरा के राजा उद्योत सिंह, रूरू और फफूंद के राजा कुशल सिंह तथा पिहानी के राजा अकबर अली खां आदि राजाओं का आश्रय देव को प्राप्त हुआ। अपने कविजन्य स्वाभिमानी व्यक्तित्व के कारण किसी एक स्थान पर देव बहुत दिनों तक टिक नहीं सके और जीवन पर्यंत भटकते रहे। रीतयुगीन कवियों को दरबारी कहकर जो लोग उपेक्षित करते हैं, देव कवि का जीवन इसका प्रमाण है कि ये कवि आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते थे। धन और पद के लोभ में चाटुकारिता करना इन्हें पसंद नहीं था। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने देव की दीपशिखा की भूमिका में लिखा कि रीतिकाल के कवि जीविका के लिए दरबारों से संबद्ध रहे तो आत्मसम्मान खोकर नहीं, जहाँ उनको लगा सम्मान कम हो रहा है वहाँ वह सब ऐश्वर्य पृष्ठ संख्या 214 छोड़कर चले जाते थे। देव पद्माकर जैसे कवि जाने कहाँ कहाँ भटके, परंतु आत्मसम्मान अपना कभी नहीं गंवाया। इसी प्रकार जो लोग रीतयुगीन काव्य को घोर श्रृंगारिक कहकर उसे खारिज करते हैं, मिश्र जी ने उनके जवाब में भी लिखा कि सूर तुलसी कबीर मीरा की तुला पर उन्हें न रखकर शुद्ध सृजनात्मक उद्भावना की दृष्टि से परखा जाए तो पता चलेगा कि उन्होंने मनुष्य के व्यापार को ही सही बड़ी गहराई में जाकर परखा है। प्यार की एक एक रंगत पहचानी है, उसकी आकुलता की एक एक करवट उनकी रचना की सिलवट बनी है। उन्होंने ऐन्द्रिय जगत को पूरी तरह स्वीकारा है, पर उनके काव्य का चरम लक्ष्य ऐन्द्रिय भोग नहीं, चरम लक्ष्य उनका भी एक ऐसे माधुर्य से अपने को भरना है जो चर अचर सब में अभिव्याप्त है, और जो भर जाता है तो जीवन सार्थक हो जाता है। देव कवि का जीवन ऐसा ही है जो लौकिक से अलौकिक अर्थात अनुरक्ति से विरक्ति की ओर जाता है। उनकी वैराग्य जनित रचनाएं तुलसी जैसे संत कवियों की अभिव्यक्ति के समकक्ष हैं। इसी प्रकार राधा कृष्ण की बेकली में देव ने जो छंद रचे, वह सुर की कविता से होड़ लेते हैं। ऐसे रससिद्ध कवि का स्मरण वास्तव में वाणी का स्मरण है। पंडित विद्यानिवास मिश्र का कथन सत्य है कि वह संस्कृत प्राकृत की मुक्तक परंपरा के एक ओर योग्य उत्तराधिकारी थे, दूसरी ओर लोक जीवन में अभिव्याप्त श्री कृष्ण की लीलाओं की अभिव्यक्तियों से अभिभूत थे और किसी न किसी रूप में अलौकिक प्यार के भी साझीदार थे। देवरसवादी परंपरा के कवि हैं। अपने लक्षण ग्रंथों में जिस रस दृष्टि का परिचय इन्होंने दिया है, अपनी काव्य रचनाओं में उसका बड़े ही मनोयोग के साथ निर्वहन भी किया है। काव्य कृतियाँ रीतिकाल में सर्वाधिक 72 ग्रंथों की रचना करने का श्रेय भी देवकवि को जाता है, तथापि आज इनमें से 15 ही उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं: भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, शिवाष्टक, जाति विलास, रस विलास, देवचरित्र, प्रेमचंद्रिका, कुशल विलास, शब्द रसायन, देवमाया प्रपंच (ब्रैकेट में नाटक), वैराग्य शतक और सुख सागर तरंग। देव के लक्षण ग्रंथों के संपादक श्री लक्ष्मीधर मालवीय ने उक्त ग्रंथों में काव्य रसायन, कुशल विलास, भवानी विलास, भाव विलास, रस विलास और सुजान विनोद को लक्षण ग्रंथों की कोटि में रखा है। इन लक्षण ग्रंथों में देव ने रस, अलंकार, शब्द शक्ति, रीति, गुण, वृत्ति, पिंगल आदि का विवेचन किया है। भले ही इन ग्रंथों में संस्कृत आचार्यों के समान मौलिकता, पृष्ठ संख्या 215 और प्रौढ़ता नहीं है, फिर भी इनकी रमणीयता और रसज्ञता किसी से कम नहीं है। इसीलिए डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने देवकवि को आचार्य और कवि दोनों ही दृष्टियों से आदरणीय माना है। देव के अन्य ग्रंथों में प्रेमचंद्रिका में जहाँ विषय वासनाओं के प्रति तिरस्कार और प्रेम के माहात्म का वर्णन है, देवचरित्र कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है, देवमाया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यानुवाद है, जाति विलास में विभिन्न जातियों की स्त्रियों का श्रृंगारिक वर्णन है, तो अष्टयाम में आठों प्रहर के भोग विलास जीवन का चित्रण है। नायक नायिका को कब क्या कहना है, यह ग्रंथ बताता है। शेष ग्रंथ नायक नायिका भेद और श्रृंगार रस से संबंधित है। देव और उनकी कविता। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े हैं कि बिहारी, इसको लेकर बड़ा विवाद हुआ। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधुओं ने एक स्वर में नवरत्नों में देव को सबसे बड़ा कवि माना। उनके समर्थन में जब पंडित कृष्ण विहारी मिश्र ने देव और बिहारी नामक ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से बड़ा कवि बताया, तो लाला भगवान दीन से नहीं रहा गया और इसका जवाब देने के लिए उन्होंने बिहारी और देव नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने बिहारी को देव से बड़ा कवि ठहराया। पंडित पद्म सिंह शर्मा ने भी बिहारी के पक्ष में ही अपना मत पहले ही दे दिया था। आगे चलकर इससे हिंदी में तुलनात्मक और निर्णयात्मक आलोचना का जन्म हुआ। देव और बिहारी वस्तुतः दोनों बड़े कवि हैं और कोई भी एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकता। डॉक्टर नगेंद्र ने देव और उनकी कविता पुस्तक लिखकर देव कवि की काव्य कला पर बड़ा ही सुंदर प्रकाश डाला है। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है कि देव उस 18वीं शताब्दी के कवि हैं जिसमें सब कुछ बिखर रहा था, साम्राज्य टूट रहा था, सामंत उभर रहे थे, भक्ति बाह्याचार में अधिक चली जा रही थी, मनुष्य को कहीं चैन नहीं था, ब्रैकेट में स्वयं देव को कहीं ठिकाना नहीं मिला, संबंधों में अविश्वास आने लगा था। ऐसे जमाने में भक्ति युग के बाद मानवीय मूल्यों की नई परीक्षा का अवसर जिन्हें मिला, उन्होंने इन्हें कवि होकर परखा, अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखी। देव ऐसे कवि हैं जिसमें अनुराग का रंग प्रधान है, यहाँ तक कि उनका वैराग्य भी श्री कृष्ण के अनुराग से रंजित है। वास्तव में देव मुख्यतः प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं। श्रृंगार संबंधी उनकी उक्तियाँ बड़ी ही मादक और मर्मस्पर्शी हैं। एक उदाहरण दृष्टव्य है, जहाँ नववधू गौने जा रही है, गुरुजनों द्वारा भूषणों वस्त्रों से अलंकृत, सखियों द्वारा शील की शिक्षा के बीच जैसे ही एक सखी ने उसके कान में यह पृष्ठ संख्या 216 कहा कि ऐसी वाणी बोलना जो मन भावन को अच्छी लगे, यह सुनते ही प्रेम के कारण उसके उरोजों ब्रैकेट में कुचाग्र परमाणु अनुराग के अंकुर उग आए हों। गौने के चार चली दुलही गुरु लोगन भूषण भेष बनाए, सील सयान सखीन सिखायो बड़े सुख सासु रेहू के सुनाए, बोलियो बोल सदा हंसी कोमल जे मन भावन के मन भाए, यों सुनी ओछ्यु रोजनि पै अनुराग के अंकुर से उठी आए। प्रेम की ऐसी गहरी मनोवैज्ञानिक अनुभूति के ये चित्र हिंदी कविता में विरल हैं। इस प्रकार श्रृंगार के अगणित चित्र, नायक नायिका भेद, अष्टयाम दिनचर्या, ऋतु वर्णन, ग्राम्य जीवन की श्रृंगारिक छवियाँ तथा भक्ति वैराग्य और अध्यात्म के छंदों में देव कवि का साहित्य बसता है। प्रेम और अनुराग की जिस मनोभूमि में पहुंचकर उन्होंने कविता की है, वहाँ हिंदी का दूसरा कवि नहीं पहुंच पाया है। श्रृंगार में सर्वांग डूबने के बाद उन्होंने अपने चित्त को राधा कृष्ण की भक्ति से निमज्जित किया है, इसीलिए उनका व्यक्तित्व रीति कविता की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाता है। सारे संसार को आत्मरूप और अद्वय भूमि के साथ ही साथ उनका काव्य दिव्य प्रेम की मनोभूमि का भी दर्शन कराता है। प्रेम का ऐसा सरल सूक्ष्म सौंदर्य युक्त चित्र रीतिकालीन दूसरे किसी भी कवि की कविता में दिखाई नहीं पड़ता। देव कवि ना तो प्रेम में कुटिलपन चाहते थे, ना ही प्रेमाभिव्यक्ति में वैचित्र के पक्षधर थे। प्रेम जैसा सरल, सहज और नैसर्गिक होता है, उसकी अभिव्यक्ति भी उसी प्रकार बिना किसी युक्ति वैचित्र के सीधे और सरल ढंग से होनी चाहिए। इसीलिए परंपरा के विरुद्ध उनका स्पष्ट मानना था कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। इस प्रकार उन्होंने ध्वनिकार आनंदवर्धन, वक्रोक्तिकार कुंतक और लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति के पैरोकार आचार्यों और कवियों से अपना पृथक मत व्यक्त किया है। देव की कविताओं में राग पक्ष की प्रधानता ही, जिसके कारण कहीं कहीं उन्होंने शब्दों का अंग भंग भी किया है, किंतु यह दोष भाषा सौष्ठव छंदों की लय और रचना में संगीत भरने के लिए किया है। कल्पनात्मकता, बिंबात्मकता, चित्रात्मकता, अलंकारिकता, नाद सौंदर्य, रमणीयार्थ, शब्दों का प्रयोग, सुकुमारता आदि देव कवि के शिल्प की अन्य विशेषताएं हैं जो उन्हें समूची रीति कविता में अद्वितीय बनाती हैं।